श्यामलिंग छटाभिरपित मन्दे कृतिमुनिवर जातं जागरोत् पट्टं वरस्य वृन्दारण्य निवासिनं हृदिरसत्तामान् राधास्कन्द निवेशितो जलगुणं ध्यायेन् परम सौभाग्य की बात है श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने जा रहे हैं। विधिवत रूप से हम लोगों ने भागवत की पूजा कर परिक्रमा कर अब आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत कृष्ण का स्वरूप है। और अपार संसार समुद्र से तुम भजामि अहम् भागवत स्वरूप। ये सेतु माने पुल। पुल किसको कहते हैं? एक बीच में गहरा पानी हो तो पुल बनाते हैं पार करने के लिए। ये दो तरफ में गहरा समुद्र है, ये भव सागर है, जन्म और मरण, एंडलेस चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ। अनादि काल से कितने करोड़ों जन्म हो गए, होते रहेंगे और इसमें हम लोग तरह तरह से कष्ट पाते हैं। बुढ़ापा सबको आएगी, मृत्यु सबकी होगी, और ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको भी कितनी प्रॉब्लम है। तो इसको पार करने के लिए ये श्रीमद् भागवत पुल के समान है। यदि कोई श्रीमद् भागवत सुनता है, यदि इसका पाठ करता है कभी, यदि पूरा नहीं है तो एक श्लोक का आधा भी श्लोक पढ़े। श्लोक नहीं पढ़ता है, केवल उसको सभी सुनता है, थोड़ा भी यदि नहीं भी सुनता है, आदर करता है, ये भागवत अच्छी चीज है, तभी उसका कल्याण हो जाता है। बहुत इसकी महिमा है, जितनी कृष्ण की महिमा है उससे भी अधिक इसकी महिमा है। जब तक भागवत रूपी सूर्य रहेगा तब तक कोटि कोटि लोगों का ये उद्धार करता रहेगा। इसकी शिक्षाएं अमूल्य हैं। अभी हम लोग गीता आश्रम की गीता जयंती में हम लोग गए थे सवेरे, बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, तरह तरह के बहुत से वक्ता लोग गीता के संबंध में बोले और बोलेंगे। गीता जैसे संसार में एक सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ है, किंतु भागवत को, गीता को पहली पुस्तक बतलाया गया। और श्रीमद् भागवत को क्या बतलाया? पोस्ट ग्रेजुएट की ये पुस्तक बताएगा। आरंभ होगा कख गघ परमार्थ का गीता से, फाउंडेशन बनेगा गीता से, उसके विचारों से। और जब उसको पूरा सुन लेगा तो फिर भागवत में उसका अधिकार होगा। इसलिए जहां तहां भागवत नहीं होता, ये बहुत कृष्ण का प्रेम बहुत ऊंचा है, इसमें प्रेम की बातें हैं। गीता में कुछ मर्यादा पूर्वक सीखने की बातें हैं, जो शरीर आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं, इसके अंदर में रहने वाली आत्मा और उन सब आत्माओं के भी आत्मा है परमात्मा, और वो है कृष्ण। संसार में समस्त समस्याओं की, जितने प्रकार की समस्या हो सकती है, जितनी प्रकार की समस्या हो, सार्वदेशिक सभी देशों के लिए और सार्वजनिक समस्त लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवत सुख और शांति को देने वाली है, और जितने प्रकार के दुख हो सकते हैं वो सबको दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत है। अभी सवेरे हमने वहां पर जो कहा था थोड़ा सा हम यहाँ पर बतलाएंगे और तब फिर भागवत आरंभ करेंगे। दोनों एक ही चीज है, पहला और दूसरा, उसके संबंध में कुछ बतलाया था, कुछ थोड़ा सा और बतलाऊं, और इसमें से बहुत से लोग नहीं भी थे, उसको भी जानना बहुत आवश्यक है गीता का उपदेश। तो उसमें पहले हमने बतलाया कि ये जो श्रीमद् भागवत के जो प्रकाशक हैं, गीता के भी प्रकाशक लिखने वाले वही हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण जिस प्रकार से गीता को बोले और जगत में प्रकाश कौन किया, ये व्यास जी। उनका जब गीता लिखने से भी मन नहीं भरा, संतुष्ट नहीं हुए, वेदों को विभाग करने पर भी प्रसन्न नहीं हो सके, वेदांत लिखने पर भी नहीं हो सके, सब कुछ कर लेने पर भी उनको जब चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, तो नारद जी आए, पूछा कि तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं देख रहे हैं, तुमने सब कुछ हुआ मन प्रसन्न नहीं। तो गुरु जी यही मुझको पता नहीं चल रहा है क्यों, हमने सब कुछ किया। देखो इसलिए तुमने साधारण रूप में धर्म के संबंध में सांसारिक विषय में तो तुमने खूब लिखा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किंतु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, स्वयं भगवान कौन है और उनका प्रेम कैसा है, ये तुमने नहीं लिखा। प्रेम के अधीन होते हैं ये तुमने कहीं नहीं लिखा, यही उनका वास्तविक स्वरूप है। वहां पर जिस प्रकार से बतलाया ना कि जिस प्रकार से कृष्ण अपने मोर मुकुट को और बंसी को राधा जी के चरणों में सौंप करके कहते हैं, मर गरल अखंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लवम, हे राधिके जी आप मेरी इष्ट हैं, प्रेम की गुरु आप हैं, मोर मुकुट और सब आपके चरणों में सौंप रहा हूं, ऐसा विश्व के इतिहास में कहीं कहीं नहीं है। जो भगवान के लिए गोपियां जैसे जिस प्रकार से सेवा की, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता, इसलिए ये व्यास जी ने पहले लिखा, गीता इत्यादि लिखा, महाभारत लिखा, किंतु चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। ये भीष्म पर्व के 25 से 42 तक 18 अध्याय गीता के हैं, उसमें मानव जाति का कल्याण लक्ष्य करके भवसागर को पार करने के लिए हम लोग न जाने कब से इस संसार में पड़े हैं, कभी गधे कभी घोड़े कभी सुअर कभी कुछ कभी देवता कभी गंधर्व, कितनी कितनी बार हुए हैं कोई हिसाब नहीं। बड़ी मुश्किल से भगवान ने दया करके फिर से मनुष्य जन्म दे दिया, इसलिए व्यास जी ने समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए इसको लिखा। और अर्जुन को एक बद्ध दीव जैसा दिखला करके अर्जुन मुक्त महापुरुष हैं, उनको कोई संदेह नहीं था। भगवान ने उनको अभिनय करा करके एक मैं नहीं जानता हूं ऐसा भाव करा करके कृष्ण से जितने प्रकार के जगतिक प्रश्न हो सकते हैं सब पूछा और समस्त लोगों के संदेह को ये दूर कर सकते। अर्जुन बद्ध जीव नहीं थे, उन्होंने इसका एक अभिनय करके और कृष्ण से प्रश्न पूछा है जो कि जीव कल्याण के लिए पूछना चाहिए पूछा। दूसरी बात, ये शास्त्र सब विपुल हैं, अगाध हैं, वेद उपनिषद इत्यादि और इसके बाद में पुराण इत्यादि शास्त्र जितने हैं अगाध अनंत हैं। व्यास जी ने जो एक जीवन में लिखा उसको करोड़ों जन्म में कोई पढ़ नहीं सकता, समझना तो बहुत दूर और करना तो और अधिक, इतने हैं। उसमें से कहीं कहीं पर कर्म योग, कहीं पर ज्ञान योग, कहीं भक्ति योग, कहीं लिखा है योगी कहा, किस लिए कहा, इसको एक मनुष्य अपनी बुद्धि से स्थिर नहीं कर सकता। यह कृष्ण ही कृपा करके गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में, किसी रूप में आए या कृपा करके ऐसे भक्तों को भेजे तभी वो हम लोग समझ सकते हैं, अन्यथा इसका सार क्या है समझना बड़ा भारी कठिन है। जब व्यास जी भगवत अवतार होकर के और इस फेर में पड़ गए नारद जी ने बताया और मनुष्यों की क्या बात है, इसलिए हम अपना कर्तव्य भी अभी समझ नहीं पाते। खाना पीना ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस यही जीवन का हमने कर रखा है, इसके अतिरिक्त परमार्थ आत्मा इत्यादि जानना नहीं चाहते हैं। तो उसमें से कब कौन सी, पहले कर्म योग होगा, ज्ञान होगा कि क्या होगा, ये कोई हम स्थिर नहीं कर पाते। अब विशेष करके जो कृष्ण को भगवान नहीं जानते हैं तो उनके उपदेशों को क्या समझेंगे। इसलिए यदि कृष्ण के प्रति कोई शरणागत हो, उनको भगवान माने और मान करके उपदेशों पर चले, तब तो कुछ उनको मालूम, अन्यथा उनको कोई फल नहीं मिलता। इसलिए श्रोताओं को यह पहले स्वीकार करना होगा कि गीता के वक्ता जो हैं स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये जरूर, और कृष्ण ने जो कुछ कहा है वो परम सत्य है और गीता को कौन समझ सकता है। भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम जद अद्भुतम, देखो तुम मेरा भक्त और सखा है इसलिए तुमको बतला रहा, नहीं तो नहीं बतलाता, इतनी गोपनीय चीज, ये एक संपत्ति है, इसलिए अर्जुन को कह रहे अपनी संपत्ति तुमको दे रहा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे शिष्य हो, तुमने कहा जो आप, मैं आपका शिष्य हो इसलिए शिष्य हूं। भक्त्यातु अनन्यासक्तो अहम एवं विदुः अर्जुन, हे अर्जुन मैं कैसा हूं, तुमने मेरा विशाल विराट रूप देखा और सब देखा, ये भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है और नहीं। इदम ते न अतस्पस्काय न भक्ताय, भक्ति के बिना गीता को नहीं जाना जा सकता है, भगवत की तो और बात है। इसलिए गीता के अनुसार में कर्म जो हम समझते हैं वो कर्म की बात नहीं कहेगी, वहां पर बतलाया थोड़ा सा अधिक रूप में यहाँ पर बतला रहा। कर्म किसको कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो करते हैं हम वही कर्म है, नहीं वो कर्म नहीं है, वो भर्व है, क्रिया है। मैं जाता हूं उसमें कर्म ही नहीं है, नो ऑब्जेक्ट आई गो। कर्म क्या है, जब हम अपने शरीर के लिए अपने लिए जो कुछ खाते हैं तो ये तो कर्म हुआ। मैं आम चूसता हूं, मैं खाता हूं रोटी, तो रोटी यहां पर कर्म है, और मैं खाता हूं इंट्रांजेटिव है ये। और तो बतला रहे हैं कर्म किसको कहा, जिसमें भगवान का कोई संबंध नहीं है और खाते हैं पीते हैं अपने लिए, अपने रिलेटिव के लिए, तब ये कर्म होगा और ये भवबंधन का कारण है। इसलिए गीता का कर्म वो कर्म नहीं है, कर्म योग है। इसलिए बतलाया यज्ञ अर्थात कर्म, यज्ञ के लिए करो, भगवान के लिए, भगवान को अर्पित करके जो कुछ खाओ पियो, तपस्या तत् कौन्तेय तत् कुदुष पुरुष समर्पण, जो कुछ करो भगवान को अर्पण करो। पहली अवस्था में अर्पण करना है, मैंने जो कुछ किया है प्रभु आपको अर्पण करता हूं। और इससे एक और है, प्रभु भला बुरा मैं जैसा हूं अब आपका, तो फिर कर्म को अर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। इसलिए गीता का कर्म कर्म नहीं है, कर्म योग है, भगवान के लिए। अभी हम लोग कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान पर प्रसन्न होकर के हम सबको माया बंध दूर करके अपने चरणों में लगाया, जन मरण बंद हो जाए सदा। और गीता का कर्म कर्म नहीं, कर्म योग है। ज्ञान का, ज्ञान के लिए भी मैंने बतलाया ईशं ज्ञानी नियुक्त युक्त एक भक्ति विशिष्य, भगवान का भजन करने वाला जो तत्व ज्ञानी है वो यहाँ पर ज्ञान का संबंध है, साधारण ज्ञान से नहीं। इसलिए गीता में साधारण ज्ञान और कर्म की बातें नहीं कही गई। तपस्या अधिको जोगी, योगिनां सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, योगी कर्मी से श्रेष्ठ है, योगी ज्ञानी से श्रेष्ठ है, योगी सबसे श्रेष्ठ है। किंतु कौन योगी, योगी नाम सर्वेशा, जो अपना योग भगवान से करने वाला, जो सब समय भगवान का चिंतन करने वाला है वही योगी, योगी नाम सर्वेशा, योगी में सबसे श्रेष्ठ वही योगी है जो मदगतेन अंतरात्मना, आत्मा अपनी आत्मा से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा। इसलिए गीता का योग भी वो भक्ति योग है। ईंट से ईंट को हम जोड़ते हैं, मिट्टी का गिलावा देंगे तो जरा कमजोर रहता है, सीमेंट से जोड़िए और अच्छा है। किंतु जीव को भगवान से सीमेंट से जोड़ा जाएगा नहीं, कर्म से जो जोड़ा जाता है वो जरा कच्चा होता है, मिट्टी का गिलावा है। ज्ञान से जब हम जोड़ते हैं तो वो जरा सीमेंट का वो से भगवान के साथ में जीव जोड़ता है, बस भव सागर को पार कर गया। इसलिए गीता का योग भी ये साधारण योग नहीं है, और भक्ति के बिना तो गीता को समझा ही नहीं जा सकता है, जगत से हम पार नहीं कर सकते। इसीलिए गीता में और एक बात बतलाया गया, सततम कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासना। जो लोग कलियुग में सब समय कीर्तन करते हैं यही सबसे बड़ा योग है, इससे बढ़कर के और कोई योग नहीं है। भगवान का नाम अकेले अकेले करे, दूसरे के साथ में करे, दस के साथ में करे। अभी जो मैं कर रहा हूँ यह कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन ढोलक और मजीरे से जो होता है वही नहीं कीर्तन है, भगवान के संबंध में जो कुछ मुख से निकले वो सब कीर्तन है। इसलिए ये कीर्तन जो जैसे परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, हम जिसका पाठ अभी करेंगे। दूसरी बात एक है, अर्जुन को कहा अर्जुन तुम ऐसे नहीं समझ सकता गीता को जो मैं कह रहा हूं, ददामी बुद्धि योगम तेन माम उपयान्ति ते, जब तुम मेरा शरणागत होगा तो मैं बुद्धि योग दूंगा और बुद्धि योग से तुम समझेगा। ऐसे ही समझ लेंगे गीता भागवत को, भगवान को ऐसे नहीं। मैं अपने मिलना का रास्ता खुद बतलाता हूँ, जो भी हमारा कोई शरणागत हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब भगवान का शरणागत होता है तो भगवान उसको बुद्धि जोग देते हैं, बुद्धि जोग करके अब ऐसे हमको पाओगे, उसके मन में स्फूर्ति करा। सदगुरु के पास में भगवान ही ले जाते हैं, भगवान ही सब कुछ सब प्रकार की सुविधाएं करते रहते हैं। हमको यहाँ पर किसने बुलाया? हमारे वर्मा, अरुण वर्मा जी ने बुलाया या बेटी ने बुलाया या इन लोगों ने बुलाया? किसी ने बुलाया, हम तो अपने आप आए, भगवान ने प्रेरणा देकर के यहाँ पर भेजा ना? और फिर लोगों से परिचय हुआ। ये कौन भेजा, व्यवस्था कौन की? कुछ कुछ रही होगी हृदय में भावना, जो कैसे हम भगवान कैसे सुखी रहे, इसलिए भगवान ने कृपा करके हमारे अंदर में प्रेरणा दी, और प्रेरणा देने से मैं यहाँ पर आया। आने के बाद में सब लोगों से परिचय हुआ, तो इसलिए भगवान ही बुद्धि युग देते। एक और बात है, कुछ लोग ज्ञान है, विज्ञान है, राजनीति है, सब विषय में तात्पर्य मूलक विचार करते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा है। उसके लिए डिस्कोर्सेज होते हैं, ग्रंथों में भी लिखे जाते हैं, किंतु धर्म के संबंध में ये धर्म अच्छा है, ये बुरा है, या इसमें गलती है, ये नहीं कोई करते। क्यों? ये डरते हैं कि ऐसा करने से, यदि क्रिश्चियनिटी से और हिंदुइज्म का ये तात्म्यमूलक विचार करें, मोहम्मडनिज्म से हमारे हिंदुइज्म का विचार करें, किस विषय में कौन श्रेष्ठ है, तो होने से दंगा फसाद हो जाएगा। वो कह जी हमारे धर्म का ये निंदा कर रहे हैं, इसलिए इसके संबंध में कुछ मत बोलो, सभी एक है, सभी ठीक ठीक है, अपने भिन्न विचार से सभी ठीक। सब विषय में करते हैं तो इस विषय में भी करना उचित है कि नहीं? इसके लिए है उचित, नहीं तो कैसे समझेंगे? इसके लिए कहते हैं कि विवाद होगा। अच्छा, तो विवाद तो राजनीतिक में भी विवाद होता है, हमारा ये कांग्रेस ठीक है, हमारा ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हमारा ये ठीक है। क्लिंटन का कहना था जी हमारा ये ठीक है, और अभी जो आए हैं वो कहते हैं जी हमारा ठीक है। संघर्ष तो इसमें भी होता है, इसलिए हम उस विचार को हम नहीं करेंगे जी ये श्रेष्ठ किस लिए है, कैसे है। इसलिए कहते हैं जब धर्म की कोई सभा होती है तो कहते हैं जब बौद्ध भी ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी पूरी ठीक है, जो जो जैसा कर रहा है वैसा ठीक है। भाई तो तुम्हारा कहने का ये तात्पर्य हुआ, चोर डकैत बदमाश गुंडे आवारे अच्छे बुरे सभी एक है, विचार को तो विचार करना चाहिए ना, विचार करके देखना चाहिए, भगवान ने बुद्धि दी है इसलिए सभी एक हैं, सभी धर्म हैं। और सबके विषय में नहीं, किंतु धर्म के विषय में, भाई वो बौद्ध, वो क्या कहता है बौद्ध? भगवान नहीं है, वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, धर्म नहीं है, बेकार। अहिंसा करो और बुद्ध के शरण में जाओ, बस बस यही सबसे बड़ी चीज है। जो उसकी थ्योरी को नहीं जानते हैं वो तो यही कहेंगे, भारतवर्ष से उसको भगा दिया गया, नहीं रहने दिया, नास्ती, तो वो भी ठीक है और हमारा सनातन धर्म भी ठीक है, दोनों ठीक है, विपरीत विचार वाले। ऐसा नहीं, विचार करना चाहिए वो क्या चाहता है। वो कहते हैं जीवात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नहीं, अपने आप ये सब चल रहा है। क्रिश्चियनिटी भगवान को मानती है, किंतु प्रेम की ऊंचाई तक जितनी है हमारे सनातन धर्म में वो आशा करनी है, जो भागवत में गए जो विचार है। लोग कहते हैं जैसे सब देवता तो बराबर हैं, सभी सर्व सब बराबर हैं, खुश करने के लिए। गीता का ये विचार है कि नहीं है, जो सब देवता बराबर है? उन्होंने कहा जो देवताओं का भजन करेगा देवलोक में जाएगा, फिर उसके पुण्य क्षय हो जाएंगे, इस जगत में आएगा, फिर संसार में घूमता रहेगा। और जो हमारा उपासना करेंगे वो कभी नहीं आएंगे इस जगत में। जदगत्वा न निवर्तन तो तत् धाम परम मम, वो मेरा परम धाम। इसलिए दोनों विचार कैसे एक हो जाए? इसलिए सभी विचार एक नहीं हो सकते। शास्त्र में तो ये कहा गया, जो कहते हैं जो देवता और नारायण या भगवान कृष्ण एक बराबर आए वो नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए सब बराबर है। अरे मैया और बेस्या बराबर है, दोनों को एक आसन दोगे? सुअर गधा घोड़ा और मैया एक आसन पर बैठा देगा? ये कैसे संभव? ये सभी बराबर नहीं है, भगवान ने अंगुलियां भी बराबर बनाई। जो जैसा है, जहां पर कर्म है यहां पर कर्ता होना चाहिए, तब वो सेंटेंस पूरा होता है, उसको अन्वय कहते हैं। मैंने रोटी खाई, अब ऐसा ना कर रोटी मुझे खाई, ये हुआ? आया समझ में? कर्ता कर्ता रहेगा, कर्म कर्म रहेगा, क्रिया क्रिया रहेगी। हम जहां पर मैंने रोटी खाई और फिर हमने कहा क्या, रोटी मुझको खाई, तो ये नहीं। शास्त्रों में जो बातें हैं उसको विचार पूर्वक ग्रहण कर, सभी सभी सब ठीक है। एक बेवकूफ कर सकते हैं, जिनको भगवान ने बुद्धि नहीं, पागल है वो कर सकते हैं। सभी एक एक है। हमारे शंकराचार्य जी, उनके जो मायावादी हैं वो मुक्ति चाहते हैं, भक्त लोग भगवान की सेवा चाहते हैं। हमारे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड गिव मी ब्रेड एंड बटर, तो सभी एक हो जाएगा, सब एक नहीं। इसलिए भगवत प्रेम ही गीता का मूल तात्पर्य है या भागवत का। और भी प्रेम करो भगवान से, कृष्ण से, यही उसका मूल तात्पर्य है। जो कि वहां पर यह कहते हैं टू प्लीज एवरीबॉडी टू प्लीज नोबॉडी, जो सबको प्रसन्न करना चाहता वो किसी को नहीं प्रसन्न करता। सभी बराबर हैं, वो कौन कहेगा जो मूर्ख है? इसलिए आप लोग सनातन धर्मी हैं, हृदय में ये भावना रहे। ये इसमें प्रेम का तत्व बहुत ऊंचा और शास्त्रों का विचार बहुत ऊंचा बनाया गया है। हम भले ही भारतवर्ष को छोड़ करके यहाँ है किसी कारण से, किंतु अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे, ये ठीक रखें। भले ही किसी कारण से जीव का निर्वाह के लिए हम लोग दूसरे दूसरे देशों में आए, उनसे कुछ सीखना नहीं है, सीखना हमारे इससे लोग सीखे। प्रेम का इतना ऊंचा भाव है, कुछ लोगों ने आजकल बिगाड़ रखा है, किंतु भारतवर्ष के विचार जैसा और कहीं भी विचार नहीं है। आत्मा आत्मा का तो कहीं विचार ही नहीं है, केवल भारतवर्ष में। आप लोग परम धन्य है जो ऐसे संस्कृति से आए हुए, इसको कभी मत भूलिए। अब हम श्रीमद् भागवत प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हम एक कीर्तन, कहाँ गई वो? अरे आपके पत्नी, हाँ तो वो करो। और आपकी पत्नी कहाँ गई? तो पहले वो एक तुम करो, कृष्ण का कीर्तन करो। कोटा पर
আড়াই ছ ব্যঞ্জন ক্লাস, তারপরে
তারপরে প্রসাদ আছে, আরতি প্রসাদ
আছে, সাড়ে ছ বাজে আধ ঘন্টা তো বলবি, আধ ঘন্টা করব, কল সে কে কব সে কব তক
কাল এক
ইসি সময় কল উনকা ভি প্রোগ্রাম রাখিয়ে আমারে উনকা প্রোগ্রাম কল রাখনা হ্যাঁ वो वहां उनके शिष्य हैं, शिष्य और शिष्य हैं, थोड़ा सा उनका प्रोग्राम भी अनाउंस कर देंगे और लोग भी आएंगे, कल रविवार है। एक समय नारद जी थोड़ा सा कुछ चिंतित होकर के घूम रहे हरिद्वार में पहुंचे तो उनकी भेंट चारों कुमार से हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के क्रिएशन में सबसे बड़े हैं, सबसे पहले और सब समय पांच वर्ष के छोटे शिशु से नंगे धड़ंगे रहते हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी जी, ये तो जरा उम्र में बड़े और वो पांच वर्ष के शिशु बने रहते और न जाने कोटि कोटि ब्रह्माओं को जन्म लेते और जाते आते देखे हैं, ऐसे हैं भगवत तत्व के पूर्ण अरुण रूप से पारंगत है। नारद जी को देखते ही देखा जी हमारे छोटे भैया नारद हैं, नारद जी कुछ उदास हैं और कुछ चिंतित हैं। सनातन जी ने पूछा, उनको प्रणाम किया नारद जी ने, मेरे बड़े भैये हमारे ऊपर में कृपा करो। तो वो बोले क्या कहूं, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं आजकल संसार में घूम रहा था कृष्ण के ये श्लोक छोड़ने के बाद, जब कृष्ण इस पर लोक को छोड़ करके चले गए अपने धाम में, तो वो कह रहे हैं मैं घूम रहा था, देखा जो कलिकाल सब जगह व्याप्त रहा है, पहले जैसा अब भाव नहीं रहा कृष्ण के समय में जैसा था। आजकल के पुरुष और महिलाएं साधु संत सभी बिगड़ गए हैं, अपने स्वभाव से च्युत हो गए हैं। महिलाएं जैसे पतिव्रता पहले थी वह नहीं रह गई, ब्रह्मचर्य पूर्वक जैसे रहती थी भीतर से कांति आती थी वो नहीं, अब तो होठों को रंगने लग गई है और केशी उनका सबसे प्रधान प्रसाधन है, तरह तरह से उसे बांधती हैं, लोगों को आकर्षण करने की चेष्टा करती हैं आर्टिफिशियल रूप बनाकर। पतियों के प्रति पहले जैसा प्रेम था, यदि मन से भी यदि संकल्प कर दिया तब उस पति को नहीं छोड़ती थी, तो ये सब चीजें नहीं देखा। पुरुषों में देखा जितना जो लबाड़ है बोलने वाला अधिक उसमें वही संत कहलाता है, अधिक से अधिक डपो शंख जैसा बोले, करे कुछ नहीं डरे कुछ नहीं, वो साधु कहलाएंगे, भीतर से कुछ नहीं भगवान के प्रति और ऊपर से कैसे हैं वो, इतने ठाट बाट से साधु लोग रहेंगे जो गृहस्थ लोग कोटिपति होने पर भी वैसा नहीं रह सकते, उनका बंगला देखिए उनका और ऐश आराम देखेंगे तो वो लोग भी लज्जित हो जाएंगे। हरिद्वार में जाइए और सब जगह में देखिए कैसा था, भीतर में वो भाव नहीं रहा, साधु वही है जो बड़ी बड़ी जटाएं लगाएंगे और लंबी चौड़ी बात करेंगे,
भक्ति का कुछ भी नहीं है,
ऐसे लोगों को मैंने देखा।
देखा क्या, ये तीर्थ है, यहाँ पर साधु संत रहते थे, भगवान की कथा होती थी, जहां जाने से चित्त प्रसन्न हो जाता था,
और वहां पर अब मुसलमानों का अधिकार हो गया।
राम के जन्म स्थान पर,
कृष्ण के जन्म के स्थान पर उन्होंने अपना
वो क्या होता है बना दिया,
मस्जिद
बना दिया, उनका अधिकार। कहीं भी अब धर्म कर्म की क्रियाएं नहीं रह गई। जहां जहां देखा ऐसी स्थिति देखा, अब वहां पर जो डाकू बदमाशों का आधिपत्य हो गया है, अब पहले तीर्थ था, अब तीर्थ नहीं रह करके बड़े बड़े अवसाद बिल्डिंग वृंदावन अब बन ही नहीं रहा, और वैसे लोग सब विशेष करके गुंडे आवारे वहीं पर होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग आते हैं उनको ठगा जाए, तीर्थों का महात्मा सब नष्ट हो गया, जो जाएंगे पैसा 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 आपका कहेंगे नहीं है तो उधार कर लो, पीछे से हम आएंगे तुम्हारे घर पर वहां से ले आएंगे। इस धर्म का स्वरूप एकदम बिगड़ गया, अब तीर्थों में वो तीर्थत्व नहीं रहा जो पहले त्रिवेणी में गंगा जमुना जहां पर मिलती थी, प्रयाग में साधु संत कौन रहते थे, वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज इत्यादि ऋषि लोग रहते थे, महर्षि लोग रहते थे, वाल्मीकि ऋषि रहते थे, अब कहां वो सब, तो तीर्थों का तीर्थत्व चला गया। भगवान की कथाएं होती थी लोग सुनते थे, और भगवान की कथाएं भी अब वो फल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, भारतवर्ष में वृंदावन में और सब जगह में भागवत पाठ का क्लास होता है, सीखते हैं, इसलिए धन उपार्जन करने के लिए सस्ता एक उपाय है, इसलिए वो सीखते हैं और जाकर के भागवत पाठ करके पहले देखेंगे कि पैसा कैसे आएगा, ऐसे उनके रोचक मन के अनुसार में कथा, भागवत की कथा नहीं कहते, त्याग वैराग्य और ये सब की बातें वो नहीं कहते, और देखते हैं कि प्रणामी कितनी पड़ी, पैसे कितने। सुखदेव गोस्वामी ने परिषद की सभा में जब भागवत की तो कितना लिया, पैसा लिया कुछ, आशीर्वाद दे करके अब कथाओं का साथ भी चला गया, क्योंकि ये लोभी जितने हैं असद आचारी जो एकासी नहीं करते, भगवान को मानते तक नहीं, और वो लोग कथाएं कहकर कथाओं का साथ, ऐसे बिरले लोग मिलेंगे जिनको पैसे का लोभ नहीं है, अपना हृदय का भक्ति लोगों में दे, उनका जीवन सुधर जाए, ऐसी चीजें, इसलिए कथाओं का भी साथ। मैं ऐसे घूमते घूमते वृंदावन में आ जाए, यहाँ पर तो कुछ होगा, तो वृंदावन में आया तो वहां एक अजीब तमाशा देखा, और वो तमाशा क्या देखा, एक बड़ी सुंदरी रूपवती एक युवक महिला थी, बड़ी उदास थी, रो रही थी, बिलाप कर, और उसके दो लड़के थे पासी में सोए थे, वो बूढ़े बूढ़े थे, सिर के बाल केश पक गए थे दोनों, और वो बेचारी रो रही थी। हमको देखते ही उठ करके प्रणाम किया, आप भगवत पार्षद हैं, मैं बहुत दुखी हूं, एक तो देखो जब मैं रूपवती युवती और हमारा बेटा दोनों ये वृद्ध हो गए हैं, बड़े दुखी हैं, इनको होश ही नहीं आ रहा, मेरा जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, कहां यहां पर पद्मनाभ है, श्रीरंगम और उधर में कर्नाटक, कर्नाटक मैंने आज का वो केरल जहां पर पद्मनाभ जी हैं, उधर में जन्म हुआ भक्ति का, क्योंकि सब जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उधर में, रामानुज इत्यादि सबका जन्म उधर में, मध्वाचार्य, इसलिए भक्ति का मेरा जन्म हुआ। और कर्नाटक में आई तो कुछ बड़ी, और बॉम्बे
बॉम्बे साइड में गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई। महाराष्ट्र में पुणे इत्यादि वो कुछ प्रौढ़ हुई। हमारे दोनों बेटे भी बड़े जवान थे और जब गुजरात में आई मैं बूढ़ी हो गई। क्यों? गुजरात में पैसा है,
पैसा हम खूब कमाते हैं और बस
उसी में रहते हैं, धर्म कर्म उतना नहीं मानते, दान कर देंगे कुछ, खंड पालन नहीं। पुणे में हमने अभी तक देखा बहुत सत्ता, बहुत सत्ता। बंबई में वो गुजरात के पास में पड़ जाता है, वो अब बिगड़ गया, होने से भी कर्नाटक वो बिगड़ गया, किंतु पुणे इत्यादि में देखा सचमुच में भक्ति अभी भी है, अद्भुत पालन करते हैं पूरा। कोई बचने हो जाएगा
जो आप लोग एटिकेट नहीं जानते हैं, वो सब एटिकेट उतर रहे हैं।
विष्णु का कैसे आदर करना चाहिए, भगवान का कैसे आदर करना चाहिए, वो लोग जानते हैं, इसलिए वहां पर तब ठीक रहे। और जहां गुजरात में मैंने पैर दिया तो भक्ति को ज्ञान को त्याग को कुछ नहीं जानते, धन ही सर्वस्व है, इसलिए हम लोग बूढ़े हो गए।
वहां से किसी प्रकार से हम तब वृंदावन गए,
मैं तो जवान हो गई तो हमारे ज्ञान और वैराग्य जो बैठे ये बूढ़े रह गए। मतलब क्या? ज्ञान वैराग्य कोई आदर ही नहीं करता, भक्ति का आदर करता है वृंदावन। ज्ञान और वैराग्य को कोई महत्व नहीं देता, इसलिए हमारे बेटे बूढ़े पड़े हैं, उनको होश नहीं, जगाती हूं भी नहीं जगते हैं। आप बड़े कृपालु हैं, आप कोई उपाय कीजिए, हमारे बेटे भी ऐसे हो जाए और स्वस्थ हो जाए और मैं भी ठीक हूं और प्रसन्न रहूं। इसका उत्तर क्या दे? मैंने देखा, जैसे सोचा बहुत, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। आकाशवाणी हो जब तुम चिंता मत करो, तुम उपाय ढूंढो जरूर पा जाएगा। अब मैं उपाय ढूंढने के लिए चला, चलते चलते यहां पर आया हूं। अब आप मेरे भैया लोग मिले, मैं समझता हूं कि ये भगवान की कृपा से आप, इसलिए आप कुछ बतलाइए ये कैसे कल्याण होगा उनका। ओ, इसके लिए चिंता, अरे तू तो नारद है ना, तुम तो हमसे भी अधिक भक्ति जानता है, तो तुम ऐसा भूल कहेंगे? ओ, जगत का कल्याण करना चाहता है इसलिए भूल करके और हमसे प्रश्न करने के लिए, भक्ति का महात्मा बढ़ाने के लिए तुम ऐसा कर रहा है, यथार्थ में तुमको कोई अज्ञानता नहीं। इसलिए साधु गुरुओं के पास में अज्ञानी बन करके मैं जानता नहीं हूं कुछ, आप कृपा करके बतला, ऐसा कहने से वो तत्व देंगे, अन्यथा ऐसा जब भी मन में जानता हूं तो कुछ नहीं देंगे। इसलिए तुम ऐसा कर, तुम सभी जानता है मैं जानता हूं, तो फिर तुम हमसे पूछ रहे। देखो एक बात करो, श्रीमद भागवत का वहां पर वचन हो और भक्ति देवी उसके दोनों बेटे आए, देखो जैसे कैसा हो जाएगा। नारद जी ने कहा जी आपको पढ़ना पड़े, आप चारों को, तो ठीक है हम लोग भागवत पाठ करेंगे। उनको कंठस्थ, इसलिए पहला उन लोगों ने आरंभ किया और भक्ति देवी को वृंदावन से और उनके बेटों को भी मंगाया गया, वो लोग भी आए और सुनने लग गए। और जितनी वहां पर देवता थे लोग एक तरफ, जितने महात्मा थे वो सब महात्मा एक तरफ में बैठे, गृहस्थ लोग थे एक तरफ में बैठे मर्यादा पूर्वक, और रोने वाले बच्चे टच्चे नहीं, जिनको अगाध श्रद्धा थी वो लोग सब बैठे, बच्चों को खेलने में इधर उधर लगा दिया, जिन लोगों को श्रद्धा नहीं है उनको दे, जब मैं भाई भागवत सुन रही हूं अभी पीछे हमको हमारे पास ले आया, इस तरह से चलाकी करके मैं तो डिस्टर्बेंस करेंगे, ऊं करेंगे, रोएंगे और सबको दिशा ही एकदम बदलता है। इसलिए ऐसे लोगों की सभा जिसमें साधु संत 88,000 और
गंगा का किनारा है, बहुत ही सुंदर किनारा, गंगा नदी वहां पर बह रही, पवित्र किया, और पासी में ऋषिकेश स्थान वहां पर आरंभ हुए। आरंभ होने के बाद में बस धीरे धीरे 7 दिन की कथा हुई, उसमें साधु संत लोग बड़े प्रसन्न हुए और भक्ति जी तो बड़ी प्रसन्न हुई और उनके बेटे भी वहां पर एकदम तगड़े हो गए, युवावस्था हो गई। ये ऐसी भक्ति है, इसमें ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवत भक्ति की कथा है। निष्कर्म अच्युत नहीं, अंतिम में श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानां प्रियं जस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्मं आस्मिष्कृतं तत्सु श्रवणम्। इसमें ज्ञान तत्व ज्ञान और वैराग्य भक्ति सुने, भागवत की कथा सुने और भक्ति की कथा सुने, भगवान का नाम करे और वैराग्य नहीं हो तो सब गड़बड़ है, कुछ लूप होल है। पानी में उतर रहे हैं और हमारा शरीर नहीं भीग रहा है तो क्या बात, भोजन कर रहे हैं पेट नहीं भर रहा तो भूत लग गया है, वो राक्षस खा रहा है तुम नहीं खा रहे। तो भक्ति करेंगे हम, भगवान का नाम करेंगे और संसार से वैराग्य नहीं आया, ये कभी हो नहीं सकता। और सही वैराग्य का मतलब यह नहीं है ये सब छोड़ दिया। द्रौपदी अर्जुन संसार में रहते हुए ये बड़े वैराग्य, कैसे वैराग्य माने क्या, विशेष रूपे न अनुराग, कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाएगा, खाया पिएगा तब संतुष्ट होगा। ऐसी भगवान की कथाओं को सुनने से उसके अंदर में इतना भगवान के प्रति प्रेम होगा जो और सब छूट जाएगा, इसका नाम यथार्थ वैराग्य। गीता में भी ऐसा कहा गया, निराहारस्य नहीं, जब एक अच्छी कोई वस्तु होती है देखते हैं ना तो निचली वस्तुओं को देखने की इच्छा नहीं रहती, विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य। आप कहेंगे जे खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं, आज एकादशी है कुछ नहीं खाए, मन और जीवा लपलपा रही है भीतर से खाने के, ये वैराग्य नहीं है। परीक्षित महाराज को उन्होंने पूछा 5-6 दिन के बाद में, जो भोजन कुछ कर लो पानी पी लो, ये तो हमारे बंधन का कारण था, आप हरि कथा रूप अमृत का ये दान देते चले, हम नहीं सुनना। अपने आप भगवान की कथाओं को सुनने से जरूर भगवान के प्रेम में वो निमग्न हो जाएगा। और चीज याद, द्रौपदी पांडव लोग कैसे थे, उनको वैराग्य था कि नहीं, इधर सुनो, वैराग्य था कि नहीं, परम वैराग्य था। नारद जी उनके घर में जाते थे, भगवान कृष्ण उनके घरों में बिना बुलाए जाते थे, भगवान के प्रति कितनी मुश्किल, वो वैराग्य था जिसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं है। इसलिए कहते हैं वैराग्य होगा ही, तत्व ज्ञान होगा ही, उससे अवश्य होगा। इसलिए वो युवावस्था को प्राप्त हो गई और उनके बेटे भी, इसलिए भक्ति में तीनों चीज होती है, ज्ञान भी होगा तत्व ज्ञान, वैराग्य भी होगा और साथ साथ में भगवान के प्रति प्रेम भी होगा, तीनों एक साथ। इसलिए समझिए आप लोगों का भी सौभाग्य है, मुझे रुपए की जरूरत नहीं है समझ लीजिए, खाने के लिए एक रोटी की जरूरत होती है, मथुरा वृंदावन में भी मिल जाती है, वो लोग दे जाते हैं, पैसे से अशांति होती है। यदि वो भगवान की सेवा में न लगे अर्थ तो क्या करेगा, खुराफात करेगा, जरूर खुराफात करेगा।
इसलिए यदि कुछ पैसा हो तो परमात्मा लगाना, नहीं तो चला जाएगा किसी न किसी रूप में। आप सोचेंगे ऐसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपया लगाया और कुछ दिनों के बाद ना ऐसा वो चला नहीं, फेल हो गया, वो रुपया ऐसे ही चला गया, तो उसे तो अच्छा है जो आ रहा है उसको भगवान के भजन में लगाते चलो, सेवा में लगाते चलो, दूसरे काम में, शुभ कर्मों में लगाते चलो। और देखो जो वो दिन दुना पड़ता जाएगा वो नहीं फेल होगा यदि भगवान की सेवा में चले, कभी उसका फेल ही नहीं। यदि होगा तो उसमें भगवान की कुछ क्रियाएं हैं, बड़े दयालु हैं, संसार को हटा करके अपना प्रेम देना चाहते। ये स्वामी जी थे भक्ति वेदांत, उन्होंने जो कुछ किया सब में फेल होते गए। भगवान कुछ नहीं चाहते, चाहते थे ये छोड़ करके चलो। इसलिए वो बिजनेस किया, बिजनेस फेल हो गया, औषधि की दवा की दुकान की तो वो भी फेल हो गया। तो वो फेरी करने लगे खुजली और ये सब की दवाएं अपने आप बना करके, वो भी फेल हो गए। अब क्या करते, मथुरा मठ में आए, मैं उनको ले आए, क्या कर रहे हैं, व्यर्थ जन्म ये जा रहा है, जल्दी से संन्यास लेकर के प्रचार कीजिए, आपको प्रभुपाद जी का ही याद। अरे मुझको मालूम होता है ऐसा ही, मैंने जो कुछ किया वो सब में हार ला गया, हमारा वो सब काम फेल हो गया। तब संन्यास लिया, संन्यास ले बाद में देखो चमके और सारे विश्व में प्रचार करके सारी जगह में नाम प्रचार किया और करोड़ों करोड़ों उनके बेटे और संतान भी हुए। ऐसे ही है, भागवत का श्रवण कीजिए, आपके अंदर में प्रेम आए। अब हम लोग, अब तक हमने तो प्रथम अध्याय से लेकर के नौवे अध्याय के प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र और सब सुना है। इस बार हम केवल कृष्ण की लीला कथाएं जन्म से लेकर के और कल से होगा। अब आज यही तक हम समाप्त करते हैं, पौने सात हो गया है और फिर कल से हम ठीक कृष्ण की मधुर लीलाएं उसके साथ साथ में राम की भी मधुर लीलाओं को उसमें युक्त करते हुए चलेंगे, दोनों एक ही चीज है। आप लोग और अधिक संख्या में आएंगे, मैं प्रसन्न हूँ कि आज आरंभ के दिन भी इतने आए हैं और क्रमशः इसमें जो आयोजन करता है, जो आयोजन में सहायक होते हैं, इस कथा में जो आते हैं, लोगों को लाते हैं, ये सब लोगों का इसमें भागवत के उसमें भाग मिलता है। इसलिए लिखा है कि जो लोग जहां जाएंगे वहां भागवत में तो उनको कथा को के स्थान को प्रणाम करें, जहां पर कथा हो रही, जिसने आयोजन किया है उसको प्रणाम करो, जो आयोजन में सहायता करता है उसको भी करो, जो श्रोता आ रहे हैं उनको भी प्रणाम करो और वक्ता को भी प्रणाम करो और इस तरह से सबको प्रणाम करके जो हरि कथा सुनेगा उसमें बहुत ही जल्दी सतान प्रसंगम विज्ञ संविदौ भवंत रित करण रसायन कथा जो सनात आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारती भक्ति, कभी उसमें श्रद्धा आएगी, साधन भजन होगा, भाव भक्ति होगा, प्रेम जरूर होगा ही, कुछ कामनाएं भी होगा तो ये कामनाएं दूर हो जाएगी और इस प्रकार से वो सुखी हो जाएगा। बस आज गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल।
हां, दस एंड्स द क्लास ऑफ द 18th of May 2002 in the evening in Houston. Hare Krishna.